ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। राष्ट्रपति उम्मीदवार चयन के विषय में आज भी दलों के बीच चर्चा जारी। नेकपा माओवादी केंद्र एकीकृत समाजवादी और जनता समाजवादी पार्टी के बीच विचार विमर्श जारी। जीवन उपयोगी और रोजगारी मूलक शिक्षा की आवश्यकता पर प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड ने दिया जोर। देश की परराष्ट्र नीति को नेपाल और नेपालियों के हित में केन्द्रित होना चाहिए, राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी का कथन। और अमेरिका के फ्लोरिडा में दो बार फायरिंग, तीन की हुई मौत, आरोपी गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति उम्मीदवार चयन के विषय में दलों के बीच आज भी विचार विमर्श हुआ। इसी क्रम में प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड और नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल के बीच विचार विमर्श हुआ। आज सिंहदरबार में हुई इस मुलाकात के विषय में पत्रकारों को संक्षिप्त प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री दाहाल ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में दलों के बीच विचार विमर्श जारी है और फागुन 13 गते तक राष्ट्रपति के उम्मीदवार के विषय का निराकरण होगा। नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल ने कहा कि विभिन्न विकल्पों में से उसी विकल्प को चुना जाएगा जो कि देश के हित के लिए उचित होगा। इसी तरह प्रधानमंत्री प्रचंड और जनता समाजवादी पार्टी के उपाध्यक्ष उपेंद्र यादव के बीच मुलाकात हुई। सिंहदरबार में की गई इस मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव और सरकार संचालन लगायत के विषयों पर विचार विमर्श हुआ। अध्यक्ष यादव ने राष्ट्रपति, नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस और एकीकृत समाजवादी लगायत के दलों को दावा होने का कारण इस विषय में विचार विमर्श के जरिए निष्कर्ष तक पहुंचेंगे। उन्होंने बताया कि जसपा पार्टी द्वारा उपराष्ट्रपति पद के लिए किए गए दावा के प्रति प्रधानमंत्री प्रचंड सकारात्मक है। नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल ने कहा कि राष्ट्रपति पद उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। आज पार्टी की बागमती प्रदेश प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में अध्यक्ष नेपाल ने कहा कि राष्ट्रपति जैसे उच्च गरिमामय पद के लिए उचित पात्र को चुनने के विषय में नेपाली कांग्रेस लगायत के दलों की सहमति पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ने कहा कि सत्ता के लिए किसी भी तरह का समझौता करने और अपने मूल्यों एवं आदर्शों को दरकिनार कर सत्ता को ही अंतिम सत्य मानने के भ्रम में उनकी पार्टी नहीं है। एमाले के संगठन सुदृढ़ीकरण के लिए संचालित मिशन ग्रासरूट अभियान के संदर्भ में आज बालकोट स्थित अपने निवास स्थान में आयोजित कार्यक्रम में अध्यक्ष ओली ने कहा कि सत्ता में पहुंचना ही अंतिम सत्य नहीं है। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव के विषय पर विचार विमर्श अभी भी जारी है। आज सिंहदरबार में तीन दलों की बैठक के बाद पत्रकारों को संक्षिप्त प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री दाहाल ने कहा कि कल भी जारी रहेगी। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड ने कहा कि सर्वसुलभ स्तरीय शिक्षा प्रदान कर देश के लिए आवश्यक जनशक्ति उत्पादन करने के लिए विश्वविद्यालयों को प्रतिबद्ध होना चाहिए। प्रधानमंत्री निवास बालवाटार में आयोजित राजर्षि जनक विश्वविद्यालय के छठवें सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री प्रचंड ने कहा कि वर्तमान सरकार नेपाल के संविधान में की गई व्यवस्था के तहत निःशुल्क शिक्षा के मौलिक हक को व्यवहार में क्रियान्वित करने के लिए संघीय शिक्षा आईन को अंतिम रूप देने की तैयारी हो रही है। प्रधानमंत्री प्रचंड ने कहा कि विद्यार्थियों को कोरा सिद्धांत तिक ज्ञान देने के बजाय जीवनोपयोगी, रोजगारी मूलक तथा समाज और देश रूपांतरण में सहयोग पहुंचाने के लिए उच्च शिक्षा प्रदान में ध्यान देने की जरूरत है। इसी तरह आज ही काठमांडू के टूरीखेल में आयोजित राष्ट्रीय सेवा दल द्वारा संचालित 17वें बैच सीनियर डिवीजन तालीम के दीक्षांत कवाज को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री प्रचंड ने कहा कि युवाओं के कंधों पर ही देश की आशा टिकी है। प्रधानमंत्री प्रचंड ने कहा कि अनुशासित और राष्ट्र के लिए समर्पित युवा वर्तमान समय की आवश्यकता है। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने कहा कि नेपाल की परराष्ट्र नीति नेपाल और नेपालियों के हित के लिए विश्व समुदाय से अधिकतम सद्भाव जुटाने में केन्द्रित होना चाहिए। आज काठमांडू में नेपाल विश्व संबंध परिषद के 75वें वार्षिक उत्सव समारोह में राष्ट्रपति भंडारी ने कहा कि नेपाल की छवि को उच्च बनाने और नेपाल एवं नेपालियों के हित की सुरक्षा करने में परराष्ट्र नीति केन्द्रित होनी चाहिए। राष्ट्रपति भंडारी ने कहा कि पर्वतीय देशों में विकास और भूपरिवेष्ठित राष्ट्रों के पारवहन अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए नेपाल को अंतर्राष्ट्रीय मंच में निरंतर पैरवी करने की जरूरत है। कार्यक्रम में परराष्ट्रविद डॉ वेश बहादुर थापा ने कहा कि यूरोप का युद्ध, जलवायु परिवर्तन और कोरोना जैसी विश्व में फैली कोरोना की महामारी पर राष्ट्र नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को और अधिक चुनौतीपूर्ण बनाया है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन,
भाग्यवानी बाबु, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजू।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजू।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ, तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् बाबुजू।
ओए, वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
हे, त पनि एनटीसी को सस्तो डे प्याक छदैछ नि।
ए हो र,
एनटीसी को डे प्याक लिन *1415# डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। उप प्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ ने कहा कि जल्द ही चक्रपथ विस्तार अंतर्गत दूसरे चरण के कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। मंत्री श्रेष्ठ ने कहा कि सड़क विस्तार के काम में मुख्य तौर पर सड़क में खम्भों और अन्य भौतिक संरचनाओं की वजह से देरी हो रही थी, लेकिन अब अधिकांश क्षेत्र की साइटों को खाली करा दिया गया है, जिस वजह से अब सड़क विस्तार का काम जल्द ही शुरू हो जाएगा। सड़क का मुआवजा करने पहुंचे मंत्री श्रेष्ठ के साथ नेपाल के लिए चीनी राजदूत छने सुंग, नेपाल विद्युत प्राधिकरण के कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिंग, काठमांडू महानगरपालिका के प्रमुख बालेन्द्र शाह लगायत चीनी दूतावास तथा भौतिक पूर्वाधार मंत्रालय के उच्च पदस्थ अधिकारियों की सहभागिता रही। उप प्रधान एवं अर्थमंत्री विष्णु प्रसाद पौड़ेल भारत के बेंगलुरू में होने जा रहे G20 के अर्थमंत्री के सम्मेलन में भाग लेने आज भारत के लिए प्रस्थान करेंगे। इस अवसर पर उप प्रधान तथा अर्थमंत्री पौड़ेल भारत लगायत विभिन्न देशों के समकक्षियों के साथ विचार विमर्श करेंगे, यह जानकारी अर्थ मंत्रालय ने दी। गौरतलब है कि नेपाल G20 के सदस्य राष्ट्र नहीं है, लेकिन चूंकि इस बार G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है तो इस अवसर पर भाग लेने के लिए भारत ने नेपाल को निमंत्रित किया है। बता दें कि G20 में भारत, चीन, जापान, अमेरिका, ब्रिटेन लगायत के राष्ट्र शामिल है। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री रेखा शर्मा ने सूचना प्रविधि संबंधी तथ्यांक को सुरक्षित बनाने के लिए नियामक और सेवा प्रदायकों को निर्देश किया। आज नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण के सहयोग में प्राविधिक पत्रकार मंच द्वारा आयोजित नेपाल 5G की चुनौती और संभावनाएं विषयक अंतरक्रिया कार्यक्रम में मंत्री शर्मा ने कहा कि नेपाल का डाटा और सूचना राष्ट्रीयता से जुड़ी होने के कारण इसे सुरक्षित और मजबूत बनाने की आवश्यकता है। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री सुदन किराती ने कहा कि राष्ट्रीय सहमति के आधार पर ही नए राष्ट्रपति का चयन किया जाना चाहिए। आज उद्योग वाणिज्य संघ भोजपुर द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मंत्री किराती ने कहा कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय एकता का प्रतीक होने के कारण राष्ट्रीय सहमति के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। आज से देश के 15 जिलों में फाइलेरिया की औषधि खिलाने का कार्य शुरू किया है। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ने आज से फागुन 25 गते तक फाइलेरिया की औषधि 15 जिलों झापा, मोरंग, धनुषा, महोतरी, रौतहट, सरलाही, बारा, रसुआ, लमजुंग, पर्वत, बागलुंग, बांके, दांग और कैलाली में ये औषधि खिलाई जाएगी। इसी बीच राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा ने 100% नागरिकों को फाइलेरिया की औषधि खिलाने का अनुरोध किया है। पर्वत में 14वें चरण के फाइलेरिया विरुद्ध औषधि खिलाने के अभियान की शुरुआत करते हुए अध्यक्ष तिमल सिन्हा ने कहा कि विगत में सभी नागरिकों को फाइलेरिया विरुद्ध की औषधि न खिलाने के कारण ये रोग पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, इसलिए इस बार 100% नागरिकों को ये औषधि खिलाने की जरूरत है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका के फ्लोरिडा में गोलीबारी की दो घटनाएं हुई, इनमें कुल तीन लोग मारे गए। ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से कनेक्टेड थी। आज सुबह एक हमलावर 20 साल की युवती को गोली मारकर फरार हो गया। इस घटना को कवर करने दो पत्रकार पहुंचे। इसी बीच हमलावर दोबारा आया और उसने पत्रकारों समेत एक मां बेटी पर गोली चला दी। हमले में एक पत्रकार और 9 साल की बच्ची की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 25.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति उम्मीदवार चयन के विषय में आज भी दलों के बीच चर्चा जारी। नेकपा माओवादी केंद्र एकीकृत समाजवादी और जनता समाजवादी पार्टी के बीच विचार विमर्श जारी। जीवन उपयोगी और रोजगारी मूलक शिक्षा की आवश्यकता पर प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड ने दिया जोर। देश की परराष्ट्र नीति को नेपाल और नेपालियों के हित में केन्द्रित होना चाहिए, राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी का कथन। और अमेरिका के फ्लोरिडा में दो बार फायरिंग, 3 की हुई मौत, आरोपी गिरफ्तार। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। शुभरात्रि।